शाम से ही रैना का मन कहीं और भटक गया था। जब से उसने टीवी पर अखिल की हल्दी की न्यूज़ देखी थी, उसके दिल और दिमाग में जैसे कोई हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। न्यूज़ एंकर की मुस्कुराती आवाज़, हल्दी में सराबोर अखिल का चेहरा, घर के लोगों के ठहाके, सब कुछ उसके भीतर गूंजता ही जा रहा था। डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसने प्लेट में खाना तो परोसा था, लेकिन हर गौर मानो बेजान था। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे, रोटी तोड़कर सब्जी में लगाना, फिर धीरे धीरे मुंह तक ले जाना, पर दिमाग कहीं और था। पिताजी सामने बैठे थे, उनकी नज़रें बार बार रैना पर टिक जातीं। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ छलक रही थी। पिताजी, मन ही मन, आज मेरी बेटी का दिल कितना टूटा होगा। ऊपर से ये ज़िद्दी स्वभाव, कुछ कहेगी भी नहीं, सब अंदर ही दबाएगी। रैना की आंखें बीच बीच में धुंधला जातीं। उसने पानी का गिलास उठाया और एक लंबा घूंट भर लिया, फिर मजबूरी में मुस्कुराकर बोली, रैना, धीरे से। पापा, खाना ठंडा हो रहा है, आप खाइए। पिताजी ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान बनाई। पिताजी, हाँ बेटा, खा रहा हूँ, पर तू बता, तेरे खाने का स्वाद कैसा है? तेरे चेहरे से तो लग रहा है कि मुंह में रोटी नहीं, बस कांटे चुभ रहे हैं। रैना चौंक गई, उसने जल्दी से चेहरा झुका लिया। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गई हूँ। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल को यकीन नहीं हुआ। वो जानते थे कि बेटी का मन कहीं और उलझा हुआ है। धीरे धीरे दोनों ने खाना खत्म किया। रैना ने थालियां उठाई और सिंक में रख दी, फिर पिताजी को सहारा देकर उनके कमरे तक ले गई। उन्हें दवाई दी, बिस्तर ठीक किया और उनके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, रैना, पापा, अब आप आराम कीजिए, दवा ले ली है, नींद आ जाएगी। पिताजी ने उसकी हथेली पकड़ ली। पिताजी, धीरे से। बेटा, खुद पर ज्यादा जुल्म मत कर, कभी कभी जो तकलीफ अंदर दबा दी जाती है वही सबसे बड़ा जहर बनती है। जो दिल में है कह दे, कम से कम अपने आप से तो सच बोल। रैना की आंखें भर आईं, पर उसने जबरदस्ती होठों पर मुस्कान ला दी। रैना, कुछ नहीं है पापा, आप बस आराम कीजिए। उन्होंने सिर हिलाया और करवट लेकर लेट गए। कुछ ही देर में उनकी सांसें भारी होकर नींद का संकेत देने लगीं। रैना चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। अलमारी के ऊपर किताबों का ढेर रखा था। वो जाकर बिस्तर पर बैठी और एक मोटी सी किताब उठाकर पढ़ने लगी। पन्ने पलटते हुए उसकी आंखें अक्षरों पर टिक तो रही थीं, पर दिमाग अब भी वहीं अटका था। हर पन्ने पर जैसे उसे अक्षरों की जगह अखिल का चेहरा नजर आ रहा था। उसकी मुस्कान, उसका गुस्सा, उसकी बातें, सब एक एक करके उभर रहे थे। रैना ने किताब जोर से बंद कर दी। रैना, खुद से। क्यों, क्यों मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही हूं? वो अब मेरा कुछ नहीं है, उसने मुझे कभी समझा ही नहीं, हमेशा मुझे तकलीफ दी, कभी मेरी खामोशी को पढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर मैं रोई भी तो उसे लगा मैं नाटक कर रही हूं, और आज वो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है, तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? उसने आंखें बंद कर ली, आंसुओं की गर्म बूंद गाल पर लुढ़क आई। रैना, आवाज ऊंची करते हुए, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर अखिल किसी से भी शादी करे, मुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि अब वो मेरा नहीं है, कभी था भी नहीं। हमारा रिश्ता बस 4 दिन का था, मजबूरी का रिश्ता, टूटा तो अच्छा ही हुआ। उसने अलमारी के शीशे में खुद को देखा। रैना, खुद से, कटाक्ष भरे लहजे में, वो सोचता होगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, पर मेरी नजरों में नहीं, वो अच्छा कभी था ही नहीं। उसने हमेशा मुझे दुख दिया, मुझे अकेला महसूस कराया, और आज देखो, पूरे शहर में उसकी शादी की खबर छाई हुई है, और मैं यहां बैठकर आंसू बहा रही हूं, क्या मैं इतनी कमजोर हूं? उसने पलंग से उठकर खिड़की खोली। बाहर रात की ठंडी हवा अंदर आई। उसने गहरी सांस ली और होठ भींचते हुए बोली, नहीं, अब नहीं, मैं उसे दिखा दूंगी कि मैं उसके बिना बहुत खुशी से जी सकती हूं। अगर वो सोच रहा है कि उसके जाने के बाद मैं टूट जाऊंगी, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी, चाहे उसके साथ रहूं या बिना उसके। उसके शब्दों में दर्द भी था और जिद भी। किताब फिर से उठाकर उसने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आंखें स्थिर थीं, दिमाग अब भी बेचैन था, पर उसने खुद को समझाने का निश्चय कर लिया था। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी 12 बजने का इशारा कर रही थी। बाहर सड़कें सुनसान थीं और अंदर रहना का दिल अब भी तूफान से गुजर रहा था। उसने लाइट बंद की, बिस्तर पर लेटी और तकिए में चेहरा छिपाकर बोली, रहना, धीरे से, खुद से। अखिल, अगर तुमने मुझे कभी समझा होता तो शायद आज ये हाल ना होता, लेकिन अब अब मैं तुम्हें अपने आंसुओं का कारण नहीं बनने दूंगी। उसकी आंखें नम थीं, पर होठों पर एक अजीब सी कठोर मुस्कान थी।